पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च उपासनं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्यसे हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चनगौरङ्गी राधेश्वरे विशुभान्सुते देवि प्रणमामि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै करारये कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्त्यादिहीनापराधलक्ष्मी चेप्तास्य कामादितरङ्गम् कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरण यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं हृदयं विमान मदभक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामेव यस्यसि ते पतिजानो प्रियोऽसि इसके पहले वो कहा है सर्प गुह्यतम सुनु भूय मे परमम वचः परमम को सबसे पहले लाओ तो क्या हो जाएगा परमम सर्वगुह्यतम भूय सुण में परम परम मने समस्त शास्त्रों में जो परम सार सारों में भी गुह्य और गुह्यों में भी सर्वगुह्यतम सुण जो भगवान के लिए बहुत ही प्रिय थी तुम हमारे बहुत प्रिय हो इसलिए तुम्हें मैं बतला यदि कोई काय मन और वचन से शरणागत भगवान का न हो और भगवान के प्रतिनिधि गुरु के चरणों में तन मन वचन से शरणागत न हो उसको यह न बतलाया जाए इसका यह तात्पर्य यदि कोई तन मन वचन से समस्त इंद्रियों से गुरु के चरणों में शरणागत हो कैसे शरणागत हो शरणागत हो करके वो श्लोक जो पहले बतलाया गया है ना परिपाके न सेवया क्या तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ये तीन चीज़ों के द्वारा गुरु जी की सेवा कर रहा हो यदि सेवा कर रहा हो तब तो वो समझेंगे जिस चीज़ को लेना चाहता है और योग्य है और यदि वो प्रणिपात प्रश्न परिप्रश्न परिप्रश्न मैंने क्या प्रश्न सीधा महाराज जी इसका क्या उत्तर होगा मत दो उत्तर उसका मत दो उसका उत्तर परिप्रश्नेन प्रणिपात पूर्वक और जो श्रवण किया है फिर तब प्रश्न करेगा तब श्रवण किया ही नहीं अब प्रश्न करने लगा तो वो प्रश्न करना नहीं जानेगा तो उसे ऊपर झापर की बातें बतला दो बस ये सर्वगुह्यतम ये मत बतलाओ इस पर शपथ दिया है कृष्ण ने जो तपस्या के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं कर सका है, शरणागत नहीं है, गुरु वैष्णव की सेवा न किया हुआ हो, तो गीता का ज्ञान मत देना उसे। प्रचार का ये मतलब नहीं है जहां तहां राख के ऊपर में घी डाल दो, ये प्रचार का मतलब नहीं है। जहां तहां जैसे तैसे सब बोल दिया, अधिकारी व्यक्ति अधिकारी देख करके उसके अनुरूप बतलाएंगे। अभी तक अर्जुन को ये सब चीजें नहीं बतलाई थी, अभी तक बतलाया जी हमारे लिए यज्ञ करो, यज्ञ अर्थात कर्मणो, ये बतलाया था, ब्रह्म ज्ञान बतलाया, परमात्मा ज्ञान उन्हें बतलाया। अंगुष्ठ परिमाण भगवान में चित्त लगाने के लिए कहा, ये बतलाया, योगिनां सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना सद्धामान जो भजते सौमान युक्त, बस यही सब बतलाया। कर्म योग से भी श्रेष्ठ है ये योग, ज्ञान योग से भी ये श्रेष्ठ है, तप योग से भी ये श्रेष्ठ है, और समस्त योगों में जो लोग अंतर मन से हमारे प्रति शरणागत हो करके हमारी सेवा करते हैं, क्या योगिनांग सर्वेशां मद गतेन अंतरात्मना, अंतर आत्मा को हमसे योग युक्त करके श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं मेरा अनन्य भाव से, समस्त योगियों से वो लोग श्रेष्ठ हैं। किंतु अपना स्वरूप यहाँ पर बतलाया नहीं, भगवान के प्रति परमात्मा के प्रति करो। किंतु इसी श्लोक में जो बतला रहे हैं, मनमना भव, मनमना भव माने कौन मनमना, मम माने कौन, कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण वक्ता है। अर्थात श्याम सुंदर बंशीधारी जिनकी बड़ी सुंदर सुंदर अलके हैं, सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, अधर पल्लों पर बंसी रख करके अपने हृदय का सारा अमृत उस बंसी के छिद्र से निकाल रहे हैं और टेढ़ी त्रिभंग रूप से खड़े हैं कदम्ब वृक्ष के नीचे वृंदावन में, ऐसे कृष्ण को के प्रति मनमना भव कहा। इसके पहले मनमना शब्द का प्रयोग बहुत कम किया है, इसलिए हमने कृष्ण के रूप में ही गोपी का उदाहरण दे करके मैंने मनमना भव का तात्पर्य समझाया, मनमना भव। और मदभक्तो के संबंध में श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि का उदाहरण दे करके भक्तों का कुछ कुछ चरित्र मैंने बतलाया, ये कैसे उनका भक्त हुआ जाता है, इसके लिए कल हमने कुछ कुछ थोड़ा सा आभास दिया। किंतु और भी बहुत भक्तों का चरित्र ऐसा है, जो जो भगवान को पाए हैं, उन लोगों ने जो साधन किया है, गोस्वामी ग्रंथों में ये दृष्टिगोचर होता है। इसलिए मनमना भव तो भावावस्था में कुछ हो सकता है, किंतु प्रेम अवस्था में ही वो ठीक ठीक मनमना भाव हुआ जा सकता है, भावावस्था साधन में ये बहुत कम होता है। मदभक्त तो ये प्रारंभ से श्रद्धा से लेकर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव यहाँ तक इसका अधिकार मदभक्तो। अब इसमें किंतु भाव की प्रबलता है, कुछ गंभीर श्रद्धा होनी चाहिए, इसी का नाम सेवा भी है। भक्त माने क्या,
भजधातु
सेवायाम, ये भक्ति है जिसमें सेवा हो। यहाँ पर तीसरा उन्होंने बतलाया मद याजी भव, याजी याजी माने यजन, यजन यज्ञ, यजन यज्ञ से होता है, यज्ञ में प्रीति न भी रहे, थोड़ी सी श्रद्धा भी रहे तो यज्ञ हो सकता है। यज्ञ तो ऊपरी उपचार है ना? ठाकुर जी का यह अर्चन भी दो प्रकार का होता है, एक सेवा, वो भक्ति में चला गया, मत भक्तो भव, और जहां अर्चन है ये जजन में आ जाएगा। आ रहा है समझ में कुछ? हमारे ये महाप्रभु जी और राय रामानंद के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसमें इस पर कुछ बतलाया गया है। 16 उपचार से कोई मेरा पूजन करता है, कैसे 16 उपचार? आसन, आवाहन, आसन, पाद्य अर्घ, आचमन, स्नान, फिर आचमन, फिर वस्त्र आभरण, तिलक इत्यादि, और इसके बाद में भोज्य, भोग नैवेद्य, आचमन, तांबूल, और फिर पुष्पांजलि। ये सब चीजें अर्चन की 16 उपचार है, द्वादश उपचार से और पंचोपचार से भी ये हो सकता है। किंतु यदि उसमें प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं रिझेंगे। भूख और प्यास होने पर पानी और भोजन का रसास्वादन होता है। जितना भी टेस्टफुल सुस्वादु भोजन क्यों न हो, भूख न रहे, किसी को दिया जाएगा, किस चीज की तरकारी बनी है, सब्जी क्या क्या बनाया है, टेस्ट करेगा। नमक थोड़ा सा कम मालूम होता है, नमक कुछ बेसी हो गया, जरा ये पतली खीर हो गई, ये रोटी थोड़ी सी टेढ़ी है, ये बराबर नहीं, गोल नहीं हुई, अरे तुम्हें गोलाई की जरूरत है न किस चीज की जरूरत है ना? ये रसगुल्ला तो ठीक है किंतु चपटा है ना? ये सब विचार उस समय होगा जब भूख नहीं रहेगा तो क्या करेगा। हमारे बामन महाराज जी हैं, एक दिन में 5 निमंत्रण हुआ प्रचारों में, तो कहते थे मैं क्या करता हूँ, अब सबका मन रखना है तो मैं बैठ करके इस तरकारी को वहाँ हटा देता हूँ, उस सब्जी को यहाँ, और उसको यहाँ, वहाँ से इसको, और थोड़ा सा उसको ऐसे करके जो जिस रूप में था थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देता, और थोड़ा सा ऐसे कर करके, और पानी पी करके थोड़ा समय लगा करके, फिर दूसरे घर में जाता तो वहाँ पर पूरा तैयार है, वहाँ पर ऐसा कर देता, भूख नहीं है। यदि भूख रहती क्या चीज है, इस पर विचार नहीं, रूखा सूखा रोटी जैसे भी हो, यदि बासी अन्न है तो उसमें पानी दे करके, नमक डाल करके, थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके, और पुलाव है, किसी को कहते हैं पुलाव, बहुत सुंदर बन, उसको बड़ा अच्छा। तो ये भूख रहने पर उसकी मर्यादा और टेस्ट उसमें लगता है, भूख है ही नहीं। यदि साधक में प्रेम नहीं है और वो अर्चन करता है तो भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे, और यदि साधक को प्रेम की भूख है तो वो 16 उपचार का एक उपचार से केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु उपहृतम स्नामी, जो प्रयत्न करके भगवान को प्रेम से श्रद्धा से जो कुछ, पत्रम, पत्र तो खाने की चीज नहीं है किंतु तुलसी का पत्ता भी यदि एक दे दिया है, पुष्पम, पुष्प भी खाने की चीज नहीं है, तो कृष्ण यदि आएंगे तो गले में उसका फूल की माला दे दूंगा,
कृष्ण गला दो ना, ऐसे तो
और यदि नहीं आएगा तो उस फूल को लेकर के
पकौड़ी
बना करके खा लेंगे। बकफूल एक ऐसा है, बहुत कोमल होता है, तो उसको बना लेंगे खा लेंगे। तो वो यदि वो भी कोई दे दे कृष्ण को, यहाँ तक कि कोमल जो पत्ते हैं उनको भी भगवान को निवेदन करते हैं। तो उसको प्रेम से दिए जाने पर भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। और यदि भक्तों में प्रेम की भूख होनी चाहिए, प्रेम ये किसमें होगा, देने वाले के हृदय में। यहां पर थोड़ा सा समझना है, क्या समझना है, यदि हमको भूख है तो कोई भी चीज सत्तू भी दे दिया जाए, कोई भी चीज हो, नमक है कि नहीं ये भी नहीं देकर के पेट भर खा लेगा और उसका रसा स्वादन होगा, मुझे मेरे अंदर में भूख है ना इसलिए मुझे। यहाँ पर भक्त को प्रेम की भूख हो तो भगवान को प्रसन्नता होती है, ये क्यों, हमें प्रसन्नता होनी चाहिए ना। जयात्मा सुप्रसिद्धति, इसका अर्थ मत लगाना, जयात्मा सुप्रसिद्धति, ये मुझे प्रसन्नता होती है, ये भोग काम हो जाएगा, समझ रहा है, है? तो वो अर्थ है ना गीता भागवत का, जयात्मा यहाँ पर आत्मा का अर्थ मैं मत लगा लेना, भगवान के लिए तो कर रहा है ना, सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज के प्रति वो भक्ति हो रही है तो अधोक्षज को ही प्रसन्न होना चाहिए ना। तो यदि अधोक्षज अर्थात भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए तो हमारी पूजा सफल हुई, और मुझे प्रसन्नता हुई तो क्या समझो, ये तो भोग और काम हो गया है। किंतु एक बात है, यदि भगवान को प्रसन्नता हो जाती है तो जीव अपने आप
प्रसन्न हो जाता है,
तस्मिन तुष्टि
जगत
तुष्टि हो जाता है। और यदि अपने प्रसन्नता के लिए भगवान की पूजा करते हो तो ये सकाम भक्ति हो जाएगी, गुणोपहित ये भक्ति, गुणाश्रय भक्ति हो जाएगी। ये अच्छी तरह से समझ लेना, अपने प्रसन्न होने की कोई भावना ना रहे, नहीं तो केवल अर्चन हो जाएगा। जो लोग अर्चन करते हैं, गृहस्थी में अधिकांश लोग अर्चन करके कहते हैं कि प्रभो हमारे समस्त कर्मों का फल आपके चरणों में अर्पण कर दिया, किस लिए, इसलिए कि हम और हमारे परिवार के लोग सुखी और शांति से रहें, बस यहीं तक हो जाएगा, ऐसा अर्चन नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर श्रीमद् भागवत से अर्चन का एक उदाहरण दे करके आप लोगों को समझाऊंगा। महाराज पृथ्वी थे, वो लिखा ना पृथ्वी पूजने मैंने यहाँ पर जजन मैंने पूजन, अर्चन होता है, कैसे होता है इसको जरा पढ़े तो तुम लोग बहुत बार बार हो गए, हम भी बहुत बार पढ़े थे किंतु ध्यान से लें, इसलिए उसमें जो आंतरिक अभ्यांतरिक जो शिक्षाएं हैं हम लोग उसको नहीं ले पाते। देखो इसमें कितना सुंदर है टीकाओं के द्वारा समझ, बेन अधार्मिक नास्तिक व्यक्ति था, ऋषियों ने सामूहिक रूप से उस पर आक्रमण किया और हूं शब्द के द्वारा वो मर गया, अपने पापों से ही मरा, भगवान इत्यादि कुछ नहीं मानता था। सब प्रजाओं में त्राही त्राही मचने लग गई, ये कोई राजा नहीं है, डकैतों का उत्पात होने लगा और तरह तरह के अत्याचार अनाचार होने लगे। लोगों ने निवेदन किया ऋषियों से, जैसे अब पृथ्वी की रक्षा कैसे होगी प्रजाओं की, उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, उसके पैर को जंघा को चीर कर और मथन किया जैसे दही मथी जाती है लकड़ी से, तो उसमें पाप पुरुष पैदा हुआ। फिर उसके हाथ को यहाँ चीर करके और मथन किया, तो ये ऐसा करने से उनमें से प्रथम महाराज उत्पन्न हुए। पृथ्वी माने क्या, उसका अर्थ किया है। जो अपने सद्गुणों से समस्त विश्व को रक्षा पालन पोषण करेंगे उनका नाम है पृथु। पृथु पृथ्वी भर में अपने यश का प्रमथन करेंगे, प्रमथन से ये पृथु, और उसे विश्व में उनकी कीर्ति छा जाएगी और उसे ही प्रजाओं का सब पालन पोषण होगा। तो अकेले नहीं निकले, एक पेयर निकला, एक जोड़ी निकली, पुरुष और स्त्री। पुरुष का नाम हुआ पृथ्वी। पृथ्वी को भर में अपने गुणों से चारों तरफ जस का विस्तार करेंगे, प्रजाओं का रक्षण करेंगे, इसलिए पृथ्वी। और उनके साथ में जो स्त्री हुई वो लक्ष्मी जी की अवतार, और ये थे भगवान के अवतार, परमात्मा के अवतार, और ये हुई लक्ष्मी जी की अवतार। इनका नाम हुआ अर्ची। जो कार्य करती है उसका नाम है अर्चना। वो क्या करती है लक्ष्मी जी, क्या करती हैं? प्रभु की सेवा करती हैं। तो ये जो पृथ्वी महाराज के प्रति, भगवान के प्रति जो कुछ कार्य करती है इसका नाम है अर्चा। अर्चा से हो गया अर्चना, और अर्चना का तात्पर्य है सेवा, पूजन, सेवन पूजन, विशेष करके पूजन, पृथ्वी पूजन। ये इन्होंने क्या किया, पृथ्वी को दोहन किया, बछड़ा बनाया स्वयंभू मनु को, और स्वयं दोहन श्रद्धा का पात्र लेकर के उसमें दोहन किया पृथ्वी को। जो पृथ्वी असुरों के अत्याचार से, बेनी इत्यादि के अत्याचार से समस्त अन्न को, दुग्ध को अपने अंदर में छिपा लिया था, अब वो दे नहीं रही थी, असत पुरुष पैदा हो गए, अब ये आए, प्रजा त्राही त्राही कर रही थी अन्न इत्यादि से, बहुत दुर्बल क्षीण हो गई थी, इसलिए पृथ्वी को ऊपर में बाण उठा करके मारना के लिए संधान किया। तू हरी हरी घास खाती है, तू तरह तरह के अन्न तुमको खिलाते हैं सब, और तू दूध को चुराती है, और अन्नों को देती नहीं है, प्रजाओं का पालन पोषण नहीं करती है, तेरा हम वध करते। वो डरती हुई गाय का रूप धारण करके इनके समीप कांपने लगी। बोले जी ऐसा मत कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ, गाय का वध नहीं होना चाहिए, आप मुझ गाय को वध कर रहे हैं और उसमें भी मैं शरणागत आपके हूँ, आप तो भगवान के अवतार हैं, मैं आपके लिए रक्षणी और पालनी हूँ, ऐसा कीजिए योग्य पात्र लाइए, बछड़ा लाइए जिसके देखने से मैं पिन्हा जाऊं, पिन्हाना स्तन में दूध आ जाना अपने आप, ऐसे नहीं होगा, दोहने वाला चाहिए, पात्र चाहिए और बछड़ा चाहिए, और मुझे दूध लीजिए। तब स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, अपने श्रद्धा के पात्र में खुद उसका दोहन किया, और प्रजाओं को सुख शांति से सबको विभाग करके बांट दिया। इतना करने के बाद में अब उनका जो पूजन है, पृथ्वी पूजन है, श्रीमद् भागवत में तीन श्लोक आए, उन्होंने पूजन किया। 100 यज्ञ यजन माने यज्ञ करने के लिए संकल्प किया। आर्यावर्त का वो ब्रह्मवर्त अर्थात सरस्वती और जमुना के बीच में, गंगा जमुना के बीच में, यहाँ पर सरस्वती की भी धारा मिलती है, उस स्थान पर उन्होंने यज्ञ के लिए स्थान चयन किया। 99 यज्ञ हो रहे, 100 यज्ञ करेंगे। यज्ञ क्या, यज्ञ अर्थात कर्मणो लोकयम अनत्र कर्म बंधरः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ किसको कहते हैं, भगवान के प्रीति के लिए जो कुछ भी आप करेंगे उसका नाम यज्ञ। यज्ञ में भी बहुत तारतम्य है, सभी यज्ञ बराबर नहीं है। ये भी जो यज्ञ कर रहे हैं, पशु लाए गए और उसमें तरह तरह के पदार्थ हैं सब, उसके द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन होता है, किंतु यज्ञ में हिंसा भी होती है। तो जिस पशु को अंत में हवन किया जाएगा, यज्ञ पशु को वहां पर रखा गया था और इंद्र ने देखा जी ये यज्ञ पूरा हो जाएगा तो हमसे भी लोग उनका आदर करेंगे और हमारा आसन भी छीन लेंगे, इसलिए चोरी चमारी से यज्ञ पशु को लेकर के उड़ा दिया, लेकर के आकाश में जाने लगे। ऋषियों ने कहा जी इंद्र लेकर के भगा जा रहा है, तो इनके लड़कों ने देखा जैसे वो तो जा रहा है भगा हुआ और साथ में यज्ञ पशु है, तो भृगु ऋषि इत्यादि ने कहा जी मारो इसे, तो बाण संधान करने जा रहे थे, किंतु देखा जटाजूट धारी कौशे लाल वस्त्र धारी, सिर में त्रिपुंड और भस्म इत्यादि लगाए थे। अरे ये तो साधु आदमी, इसको मैं कैसे मारूं? मारो मारो, ये पाषंड वेश है, मारो इसे। त्रिपुंड लगाए हुए है, ये संतों का चिन्ह नहीं है। त्रिपुंड लगा लिया, एक बिंदी यहां दिया और जटाजूट खूब लगा लिया। रावण सीता हरण के लिए जा रहा था तो कैसा बना? ऐसा ही वेश बना लिया, लाल कपड़े गेरुए नहीं, हाथ में दंड ले लिया और चुरा करके जा रहा था, मैंने पाषंडी वेश बनाकर। इसलिए पाषंडी वेश वालों को वैसा वेश देकर के मत रिझ जाओ जो ये भक्त हैं। उस समय इंद्र ने 10-15 बार उसको चुराया और 10-12 बार जो जो वेश धारण किए ये सब पाषंडी वेश, जबकि ये बाण चलाया तो उस यज्ञ पशु को और ये वेश दोनों को छोड़ करके वो भाग गए। कुछ लोग जो थे उन जो वेश छोड़ गए थे उसको ग्रहण कर लिया ना, तो वो लोग पाषंडी है। फिर यज्ञ आरंभ किया, फिर आए हाथ में नरम मुंड लेकर, सूखा क्या कहते हैं
खोपड़ी,
खोपड़ी सूखी हुई खोपड़ी, हाथ ऐसे किए हुए बड़ा भयंकर, और उसमें लाल रंग रख दिया और वेश बनाया, त्रिशूल ले लिया और ऊपर से नीचे एकदम कपड़ा लाल और त्रिशूल हाथ में बड़ा भयंकर, मोटी मोटी रुद्राक्ष की मालाएं उबड़ी खाबड़ी जिसे शरीर छिल जाएगा। अरे देखो इंद्र लेकर के जा रहा है, फिर बाण संधान, फिर उस बेश को छोड़ करके और बस उसको छोड़ करके भागा। उसको भी कुछ लोगों ने जो बेश छोड़ा हुआ था उसको ग्रहण कर लिया, वो नर कपालिक हुए, कपाली आजकल जरा कम दिखते हैं, पहले ये सब होते थे कपाली। इसी तरह से जितने वेश चोरी करते समय उन्होंने धारण किया वो सब पाषंड वेश है। इसके बाद में देखा जी लड़कों के द्वारा ये नहीं मर रहा, बस प्रचंड क्रोध करके हाथ में धनुष लिया और बैठे बैठे इंद्र को देख करके छोड़ने लगे। जजवानों ने कहा, मैंने ऋत्विकों ने, महाराज आप क्रोध मत कीजिए, आज शांत होकर के बैठिए, हम लोग उसको यहीं पर बुला लेते हैं और आग में हवन कर देंगे। बस वो शांत होकर के बैठे और उन ऋत्विकों ने ऐसा मंत्र जप किया, कितना बजा? छः, तो 5:30 में 6 बज गया, ठीक कर दें। तो वो क्या करें, बैठ गए और इंद्रम जजामहे ऐसा कह करके आवाहन किया और इंद्र वहां से सिंहासन में, सिंहासन उनका स्थिर था तो स्थिर सिंहासन समेत उनको खींचने। इंद्र घबराए। अब थोड़ी दूर तक स्वर्ग से बाहर इतने हुए थे, इतने में पितामह जी को स्मरण किया। पितामह ब्रह्मा जी, अरे बेटा ऐसा मत करो, अरे इंद्र जैसा भी है प्रभु का अंश है, प्रभु की बहुत सेवा करता है, उसको आग में हवन मत करो, उन्हें छोड़ दो, तुम्हारा उद्देश्य सफल हो जाएगा, हमारे वर से हो जाएगा। अरे तुम तो सात्विक पुरुष हो, तुमको क्या जरूरत है इसी इनको नष्ट करने की। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर से पृथक है। जो लोग शरीर में आत्मबुद्धि रखते हैं वो पाषंड ही है, बद्ध जीव। तुम तो ऐसा नहीं है, तो तुम ऐसे सुखों के लिए क्या हरि की आराधना करता है? छोड़ो 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 ये सब चीजें। उनके कहने से उन्होंने छोड़ दिया, कहा जब तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा तुम फिर आरंभ करो। बस जैसे ही आरंभ किया थे ही भगवान विष्णु हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए और इंद्र को अपने बगल में लेते हुए वहां उस यज्ञ में उपस्थित हुए। प्रभु जी ने कहा तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ, इंद्र को क्षमा कर दो, इंद्र हमारा ही अंश, इसके माध्यम से हम जगत का रक्षण और पालन पोषण करते हैं, इस पर तुम द्वेष मत रखो। तुमने जो इसमें हमारा पूजन किया, क्या पूजन किया, षोडशोपचार से उनका पूजन किया और यज्ञों में अपने भोग की लालसा से करते हैं, जैसे सागर महाराज इत्यादि ने किया, किंतु पृथ्वी महाराज जी का हरि का पूजन था, इसलिए इसमें शरीर और आत्मा में भेद दिखलाते हुए आत्मज्ञान से युक्त होकर के उन्होंने हरि की आराधना की, उसमें पूजन का उन्होंने किया। तो एक पूजन करने से ही उसी पूजा यज्ञ का मुख्य था वो पूजन, इस यजन का उद्देश्य, इसलिए भगवान इससे प्रसन्न हुए। यद्यपि यह मुख्य चीज नहीं है, सेवा नहीं थी, तभी ये प्रसन्न, ये जगत व्यापार के लिए, जगत की रक्षा करने के लिए ये यज्ञ किया था और भगवान प्रसन्न हो इसके लिए, इसलिए मुख्य तो ये नहीं है, जैसे गोपियों का मुख्य है, भक्तों का मुख्य होता है, तो भी भगवान प्रसन्न होकर के और उन्हें बर दिए। इस तरह से पृथ्वी पूजनम, पृथ्वी जी पूजा के, और कैसे अर्चा देवी जिस प्रकार से उनकी पूजा करती हैं, ये इसीलिए उसका नाम अर्चन हो गया, अर्चा से अर्चन। हम लोग अर्चन करें तो केवल ये जो कुछ तुलसी इत्यादि देते हैं, सोरसो उपचार करते हैं, अपना एक ड्यूटी कर्तव्य कर लेते हैं, मान लें कि सारा जीवन भर जिनकी हम पूजा की या 20 वर्षों तक जिसकी हम पूजा की ना, प्राण के समान समझ करके, और मान लें कि हमसे और पुजारी से किसी बात के लिए थोड़ी सी खटर बटर हो गई, तो हम उस पूजा को छोड़ करके हम चले जाएंगे कि नहीं, तो वो पूजा कैसी पूजा हुई? जिसको इतना सजाया, लाड़ पार किया और सब कुछ किया, अब भाई हमसे वो झगड़ा करते हैं, हमसे ये पूजन पूजन नहीं होगा, तो आप शुद्ध व्यक्ति हैं, आप लोग विचार कीजिए जो पूजन किस लिए था, जिस पूजन में हमको किसी चीज की अपेक्षा नहीं, अपने प्राणों के काम से आसक्ति से हम पूजा कर रहे हों, हम क्या करेंगे, लड़ाई होगा तो हम ठाकुर जी को लेकर के चले जाएंगे। मीराबाई जैसे घर छोड़ी तो क्या किया, ठाकुर जी को छोड़ दिया, मेरे तो गुरुदार गोपाल ले लिया कोले में, कभी आंखों में बैठाती है, कभी सिर पर रखती है और आंसुओं से उनका पूजन करके उसका स्नान कराती है। इसलिए पूजन वैसा होना चाहिए। ये तो शास्त्रीय उपमा हमने दिया, अब थोड़ा सा लौकिक की तरफ हम लोग चले। मथुरा की बात, हमसे कोई एक महिला ही या कोई कह रही थी, यही थी, अपने अनुभव की बातें कह रही थी किसी से, माने सत्य बात। और प्रतीति भी ऐसी होती है, ये बात ठीक हो सकती। एक आदमी शालग्राम शिला का पूजन करता था, उसे कोई जानता फानता नहीं था, साधारण रूप में। उसका नियम था जो 4 बजे भोर में वो जरूर जमुना स्नान करने के लिए जाएगा, और स्नान करके जमुना का जल कलश में भरकर ले आएगा, और रख करके फिर अपना तिलक अन्हित ये सब कर करके बस ठाकुर जी का पूजन करेगा, उसी जमुना जल से ही करेगा, और दूसरा कोई जल नहीं। और ठाकुर जी का विधिवत सब सेवा करता है, पूजन कर करके जैसा अर्चन करना चाहिए वो अर्चन करता है बड़ी श्रद्धा के साथ। कुछ दिनों के बाद में होते होते 10-15 वर्ष ऐसा किया, एक दिन घना घोर अंधकार अमावस्या की रात और माघ का महीना, हवा सनसनाती हुई चल रही थी, फुहारे जैसा वर्षा भी हो रही थी, वर्षा हो गई थी, अभी वर्षा बंद नहीं हुई, रात भर वर्षा बरसती है अभी भी। जमुना में कुछ बाढ़ आ गई, रास्ते में जमुना में जानते हैं ना विश्राम घाट जाना है आपको, और बाढ़ थोड़ी सी आ जाए पानी, तो वो पानी कहाँ तक आ जाता है, दुकानों से टकराता है, दुकानों में भी भर जाता है। विशेष करके स्वामी घाट का रास्ता, वहाँ पर तो मानो प्रचंड धारा चलती है, तो मानो वो उधरी से आ रहा है विश्राम घाट पर स्नान करने के लिए। तो इसी स्थिति में ठिठुरता हुआ किसी प्रकार से अंधकार में, उस समय तड़प वर्षा थम गई 3 बजे के करीब में, वो समझा जे 4 बज गई। पहले तो घड़ी फड़ी नहीं देखते थे हम लोग भी अपने जीवन में, रात में उठते थे ध्रुव तारा से हम लोग अनुमान लगाते थे जे रात कितनी बीती, और शुक्र तारा एक है, शुक्र तारा जब उत्तर में आ जाएगा और उसकी स्थिति से हम लोग जानते थे जे कितनी रात बीत गई है कितनी है। तो उस समय बादलों के वजह से वो तारा उगा नहीं, इसलिए उनको भ्रम हो गया, पहले ही चल दिए, घोर अंधकार और हो गया। स्नान करने के बाद में तो वर्षा होने लगी, और ऐसा अंधकार हो गया जो कुछ सूझे नहीं, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। देखा जब अब आ रहा है किंतु कैसे चले क्या करें कुछ पता नहीं। देखा जो एक छोटा सा लड़का, लौंडा कहते हैं ना,
लौंडा
छोटा सा बच्चा, हाथ में लालटेन लिए हुए, बोरा उड़े हुए, बोरा को डबल करके ऐसे सिर में लगा लेते हैं, कछनी काछे लालटेन लिए आ रहा, और इनको तो रास्ता सूझ नहीं रहा था, तो वो चलने लगा। तो लड़के ने बड़े मीठे आवाज से पूछा, बाबा कहाँ जाएगो किधर जाएगो? तो उसने कहा, जिधर उनको जाना था ना, जिधर इनको जाना था, तो इन्होंने बतलाया कि हमको यहाँ जाना, हमारे साथ चलोगे, रास्ता हम दिखा, हमको तो इसी गली में जाना है। उसे एकदम गली का नाम बतला दिया, चौबच्चा की 9 गजा या क्या क्या नाम है, गजा पैसा है, किसी गली का नाम बतला दिया। कह जैसे ये छोटा सा लड़का जानता, विश्वास हो गया, बस साथ में चलता, आगे आगे बच्चा, पीछे पीछे ये, कोई शब्द नहीं कुछ नहीं। सोच रहे ये रात में लड़का कैसे आया, और भी लालटेन के साथ में, इसको क्या जरूरत पड़ी थी, ठुठुरता हुआ बोरा बन करके आ रहा है। चल तो दिए, चलने के बाद में बाबा अपने गली में आ गया ना, हमको सीधा जाना है, तुम घर में अपने गली में चले जाओ, वो ये तुम्हारा घर है ना, तो ठीक। जब वो इधर मुड़े और मुड़ करके फिर बच्चे की तरफ में देखा, कुछ संदेश आ हुआ उसके तरफ में देखा, तो न हरिकेन है न बच्चा है न कुछ, बस हाथ मलते रह गए, ये ठाकुर जी। हमारा नियम रक्षा करने के लिए इस प्रकार देश में हरिकेन लेकर के रास्ता दिखा करके हमको यहाँ कर गए। ये है अर्चन पूजन, जिसके अंदर में अपनी निष्ठा ठीक रख करके भगवान का ठीक ठीक पूजन करना है, अपने सुख दुख का ख्याल नहीं उस पूजन के लिए। तो इसको कहते हैं भूख। इस भूख के साथ में, इस प्रेम के साथ में यदि कोई भगवान का यजन करे तो क्यों नहीं लेंगे। इसलिए प्रजतात्मनः, प्रयत्न करता हुआ श्रद्धा पूर्वक प्रेम से जो हमारा अर्चन पूजन करता है, ऐसे नहीं गुरु से, गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु जी से कुछ बात बतंगड़ बन गई और गुरु जी ने डांट दिया थोड़ा सा, पहले तो बहुत स्नेह किया था, तो बहुत उत्साह में भक्ति थी ना, अब कुछ घन तरला हो रही है, तरल भी हो गई, बस गुरु जी ने कुछ कह दिया तो गुरु जी ने ऐसे कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा जी गुरु जी ये रही, ये है तुम और ये रही तुम्हारी सेवा। जय सिया राम। बस ऐसा नहीं, परीक्षा तो तब होती है जबकि कठिनाइयों में भी उनकी सेवा नहीं छोड़, और ऐसे सेवकों को प्रभु भी जन जन्मांतर में नहीं छोड़ते हैं, वो गुरु भी नहीं छोड़ेंगे और भक्त छोड़ेंगे। इसी तरह से अभी एक और मुझे स्मरण हो आया पूजन का, अभी भूल गया, अभी हृदय में कौंधी थी वो, फिर अभी भूल गया, बातें भूल जाती हैं। तो पूजन जैसा भी हो, इस उदाहरण के द्वारा ये पूजन ऐसा ही होना चाहिए। परिक्रमा भी पूजन का अंतर्गत ही समझ लीजिए, है तो भी ये सब चीजें श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि के बाद में अर्चन में ही ये सब ऐसे ही। हाँ अब याद आ गया, आप लोग सुने हुए हैं, बहुत बार इसको सुने, कोई ब्राह्मण ठाकुर जी की सेवा पूजा करता था और सेवा पूजा करने के बाद में भोग लगाता था, उसको कुछ महीना मिलता था राजकीय कोष से या कहीं से, कोई उसको महीना देता था, वो भृतक पूजक था। भृतक पूजक माने क्या, कुछ पैसा लेकर के वो पूजन करता था। तो पैसा लेकर के जो पूजन करेगा तो पैसा और ठाकुर जी में दोनों में उसकी प्रति किस में अधिक रहेगी, स्वाभाविक। पैसा नहीं देगा पूजा हम नहीं करेंगे, पैसा देंगे पूजा करेंगे। देहातों में बंगाल में ऐसा नियम है, 10 घर में पूजन करना होता है, कह देगा जैसे देखो पकी पकाई हुई चीज भोग में मत लाना, हम नहीं लगाएंगे, कच्ची चीजें चावल है, सब्जी है, फल है, ऐसी चीजें तुम लोग रखना, वही चीज। तो वो जाएगा जब ठाकुर जी को दिखलाएगा कच्ची चीज चावल टावल, 10 घरों से चावल फूल पूजा ये सब लेकर के कपड़े टपड़े जो अपने गमछे में एक तरफ में बांधता चला जाएगा और एक घर से दूसरे घर तीसरे घर 10 घर में पूजा करके अंत में देखेगा जे कितना माल हुआ अपने घर में लौट के। ठाकुर जी से पूजा से कोई एक पैर जाएगा भीतर में, दूसरा बाहर ही रहेगा, ठाकुर जी को निवेदन कर दूंगा। इसको भृतक पूजक कहते हैं, ये पूजक नहीं है। तो कोई ऐसा ही था, कहीं से उसको पैसा मिलता था और पूजा करता था, उसको कहीं बाहर जाना था। उसने अपने लड़के को बड़े प्यार से कहा कि बेटा ब्राह्मण का बेटा है, मैंने तुमको सिखाया तो नहीं अर्चन, फिर भी तुम ठाकुर जी का पूजन पूजन स्नान करा करके उनको भोग लगा दे, अच्छा जैसा कहते हैं वैसे ही कर दूंगा। बस उसकी मैया ने रोटी वोटी बनाई और सब्जी वब्जी तैयार की, इसने ठाकुर जी कहा ठाकुर जी स्नान कर लीजिए, बर्तन में उनको रख दिया और गंगा जल इत्यादि से तुलसी के साथ में उनको कहा जी प्रभु जी आप स्नान कीजिए, बस बस स्नान करा करके धो पोछ करके कपड़े पहना करके उनको आसन पर बैठा दिया, सिंहासन पर। भोग लगाने की बारी आई, तुलसी उसमें छोड़ दिया, कहा जी ठाकुर जी अब आप प्रसाद भोग आरोगिए, मैं मंत्र अंतर तो कुछ जानता नहीं हूँ, बस आप प्रसाद पा लीजिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। खड़ा हो गया। उसके पिताजी 3-4 मिनट में भोग लगाते थे, ये 10 मिनट 15 मिनट 8 घंटा तक खड़ा रहा, किंतु देखा जे थाली की तरफ में तो वो कुछ खाया नहीं प्रभु ने। कहिए पिताजी भोग लगाते हैं तो आप बड़े चाव से खाते हैं, और मैं भोग लगाया मंत्र नहीं जानता इसलिए नहीं खाएंगे, हमारे पिताजी ने कहा है, ये तुम भोग लगा देंगे और पिताजी चले गए आप भूखे रह जाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा जब तक कि आप नहीं खा लेंगे। सचमुच में बड़े अंतर से उसने कहा, मंत्र का भाव यदि ऐसा न रहे तो वो मंत्र काम नहीं करता। भाव के लिए मंत्र होता है जो भाव को जगाए, और जो भावहीन रूप कर रह करके सेवा करेगा तो ठाकुर जी कैसे नहीं। तो वो कहा जो प्रभु आप नहीं खाएंगे मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा, और अधिक देर लगाएंगे तो मैं इसको उठा करके रख दूंगा, मैं भी बिना खाए पिए सो जाऊंगा। कुछ देर के बाद में भगवान से रहा नहीं गया, झट सिंहासन से उतर आए और आसन पर बैठ करके दोनों हाथों से उन्होंने खा लिया, एक भी रोटी शेष नहीं रखी, सब खा लिया, बड़ा प्रसन्न हुआ और थाली लेकर के घर पहुंचा। मैया से कहा मैया वो तो आज खा ही नहीं रहा है पेठा, बड़ी मुश्किल से बहुत कुछ उलाहना देने पर तभी उन्होंने खाया, जो खा लिया रोटी कहाँ गई, रोटियां कहाँ, तो उन्होंने खा लिया। खा लिया ही कैसे हो,